ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 30 मार्च 1968। भगवान वाच बाप बैठ बनुवानी बच्चों को समझाते, इस दुनिया को आसुरी दुनिया कहेंगे। और नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं और आसुरी दुनिया में मनुष्य बहुत जास्ती होते हैं। अभी ये राज भी किसको बताना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के भगवान बाप की ही है। गीता को तो सभी मानते हैं और गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप बैठ नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रह जाते हैं। फैमिली प्लानिंग होती है तो पुरानी दुनिया के ढेर के ढेर मनुष्य खलास हो जाते हैं। तो ये तो ऑटोमेटिकली ड्रामे में उनका पार्ट नुदा हुआ है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, वो बाप ही आकर के आदि सनातन देवी तीर्था धर्म बाप प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। अपन को देवी देवता धर्म का समझना चाहिए। गीता में भगवान सिर्फ बतलाते हैं कि मैं आता हूं एक धर्म की स्थापना करने। तो जरूर और सब धर्मों का विनाश हो जाएगा। इससे फैमिली प्लानिंग नंबर वार हो जाएगी और ये नंबर वन फिल्म फैमिली प्लानिंग है। सारे विश्व पर जय जयकार हो जाएगा। एक और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी और दूसरी ओर अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। अभी तो बहुत मनुष्य होने के कारण इस दुनिया में बहुत कचरा हो गया है। इस समय मनुष्य कुतरे बिल्ले मिसल है। कामी को कुत्ता कहा जाता है और झगड़ने वालों को बिल्ला कहा जाता है। ये दुनिया ही मिच्छू टिंडल मिसल है। शास्त्रों में भी दिखाते हैं शंकर पिछाड़ी किसके पड़ा, दिखाते हैं शंकर पार्वती के पिछाड़ी पड़ा। फिर क्या हुआ? पार्वती पर फिदा हुआ, पार्वती की पिछाड़ी पड़ा तो उनका वीर गिरा और उससे बिच्छुटन पैदा हुए। अभी वास्तव में तो बिच्छुटन इस समय के सब मनुष्य हैं। अभी जो नई दुनिया की प्लानिंग होती है इसे वे कुत्तरे कुत्तरियां बिच्छू टिंडन जैसे थोड़े ही पैदा होते हैं। फिर बहुत हो जाते हैं। वहां नई दुनिया के तो जानवर पक्षी आदि बड़े शोभनीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाएगी। वहां उनको उनसे डरने की तो बात ही नहीं। तो बाप बेटे समझाते हैं कि तुमने मुझे बुलाया ये है कि फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात इस दुनिया की पतित फैमिलीज को वापस ले जाओ और पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सभी कहते थे बाबा आकर के पति दुनिया को खलास करके नई दुनिया बनाओ, ये बाप की ही प्लानिंग है। अनेक धर्म खलास करके एक धर्म की स्थापना कर देते हैं। ये तो बहुत फर्स्ट क्लास फैमिली प्लानिंग है। ऐसी फैमिली प्लानिंग को देखने से ही दिल खुश हो जावे। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना? वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नुदी हुई है, तुम बच्चों को समझाना है। पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं। बाकी कांटों के जंगल की एक कलयुगी दुनिया खलास कर देते हैं, ये सारे भंबोर को आग लग जाती है। तो ये धंधा बाप का ही है। कौन सा धंधा बताया? पुरानी दुनिया के भंभोर को आग लगाने का धंधा बाप का ही है। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कितनी भी मेहनत करो, कोई की भी मेहनत सक्सेसफुल हो नहीं सकती। बाप कहते हैं तुम काम विकार को अपना मित्र समझते हो, वो तो बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत हैं जो इसे काम विकार को अपना मित्र समझते हैं। मित्र समझते हैं तब तो बड़ी धूमधाम से शादियां कराते हैं काम कटहरी चलाने के लिए। तो उनका भी एक ऐसा चित्र बनाना चाहिए कुमार और कुमारी दोनों के हाथ में काम कटहरी देनी चाहिए। वो उनके गले में, वो उनके गले में लगाते हैं। फिर उसे चित्र पर तुम समझाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, और फिर तुम काम कटारी चलाने का प्लानिंग बनाई देते हो। बाप आर्डिनेंस निकालते हैं इन काम विकार पर जीत पहनो, और ये जीत पहनने का भी ड्रामा में नूंद है। बिचारों को पता ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रही है। और ये फैमिली प्लानिंग तो कलप कलप बाप ही करते हैं। तो ड्रामा अनुसार फिर ये फैमिली प्लानिंग अभी होनी ही है, नहीं तो ऐसे मानेंगे नहीं। सतयुग में होते ही हैं बहुत थोड़े मनुष्य। तो उस फैमिली प्लानिंग में फिक्र की कोई बात नहीं है। बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? फैमिली प्लानिंग का प्रैक्टिकल ये काम कर रहे हैं। और वो लोग तो कितना फैमिली प्लानिंग के लिए माथा मारते रहते हैं, देश देश में फैमिली प्लानिंग चलती है, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। दिन दूनी रात चौगुनी आबादी बढ़ती जाती है। तो एजुकेशन मिनिस्टर को भी तुम समझा सकते हो, देखो इस काम विकार के कारण सभी के करैक्टर से कितने खराब हैं। और देवताओं के करैक्टर्स कितने अच्छे थे। मनुष्य बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। ऐसे तुम बेपरवाह बादशाह बनकर के वाणी चलाओ, बोलो ये फैमिली प्लानिंग कोई मनुष्यों का काम नहीं है। करैक्टर सुधारना कोई मनुष्यों का काम नहीं है, ये तो ऊंचते ऊंच बाप का ही काम है। जिनका ऊंचे ते ऊंचा करैक्टर है उनको कहा जाता है एवर प्योर। उनके राज्य में बरोबर एक राज्य था, एक राजा, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल और एक मत। उस राज्य में कितने थोड़े मनुष्य थे, जब अकेले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो उनसे पूछना चाहिए ना। परंतु ऐसा बोलना बहुत थोड़े बच्चों को आता है। बित बित बहुत करते रहते हैं। तो फिर वह रुआब नहीं रहता है। उन्हों को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी और अभी फिर कर रहे हैं। उनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा था ये लक्ष्मी नारायण का चित्र एकदम फ्रंट में रखो और बत्तियां आज खूब जगाओ, प्रभात फेरी में भी ये ट्रांसलाइट का चित्र हो। क्या ऐसा चित्र प्रभात फेरी में होगा तो कोई भी एकदम क्लियर देखेगा। बोलो हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं जहां यथा राजा तथा प्रजा सब कैसे होंगे,
सब सुखी।
सुखी नहीं, ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ेंगे। कैसे? जैसे ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया गया 30 मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज, वहां यथा राजा तथा प्रजा सब ट्रांसपेरेंट होंगे। ट्रांसपेरेंट का मतलब दर्पण की तरह उनका चेहरा दिखाई दे कि कितनी अच्छी पर्सनालिटी वाले लक्ष्मी नारायण थे। अभी फिर ये फैमिली प्लानिंग हो रही है। डीटी डायनेस्टी की स्थापना हो रही है। बाकी जो ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं बनेंगे, अव्यक्त स्टेज वाले नहीं बनेंगे, उनका क्या हो जाएगा? उनका विनाश हो जाएगा। जरमुई जगमुई में रिजल्ट क्या होगा है? लड़ाई झगड़े करने वालों का क्या हाल होगा? उनका विनाश हो जाएगा, क्योंकि लड़ने झगड़ने वालों से तो बू आती है कि इन्होंने बाप को नहीं पहचाना है, इनका कोई धनी धोरी नहीं है। तुम कहते भी हो हे पतित पावन, आकर के हमको पावन बनाओ, तो बाप ही बता सकते हैं। एक देवी देवता धर्म ही पावन होता है, बाकी सभी खत्म हो जाते हैं। बाबा खुद कहते हैं, बाबा बाबा ऐसे कोई और कह ही नहीं सकता, ऐसे नहीं कि बाबा तुम ब्रह्मा के लिए कहते हो। बोलो, हम ब्रह्मा को बाबा नहीं मानते। ऐसे तो जो भी बूढ़े होते हैं सबको क्या कहते हैं? बाबा। बोलो, ये प्लानिंग तो शिव बाबा के हाथ में है, और सत्युग में ये प्लानिंग हो जाती है। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, इस युग पर मनुष्य पुरुषोत्तम बन जाते हैं, तो ये पक्का समझ लो कि बाबा जीते जी यह प्लानिंग करके जाते हैं। क्या ऐसे नहीं कि बाबा मर जाएगा फिर मनुष्य गुरु बैठ करके प्लानिंग करते रहेंगे और प्लानिंग सक्सेस हो जाएगी? बाबा के सामने ही एक धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर के समझो। तुम्हारी इस बात को सुनकर के तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। ऐसी बातें सुनकर के मिनिस्टर आदि कुछ भी कर नहीं सकेंगे, अधिकारी है ना, जो खुद ही विकारी है वो फिर निर्विकारी प्लानिंग कैसे बनावेंगे? है कितना सहज, परंतु ऐसी ऐसी बातें तुम करते नहीं हो। बोलो, बाप तो ऊंचे से ऊंचे भगवान है। क्या ऊंचे से ऊंचा भगवान ही आकर के ये प्लानिंग करते हैं, और नंबर वार जो भगवान बनकर के बैठते हैं, शिवो हम बन के बैठते हैं, उनके आने से तो दुनिया की आबादी बढ़ती है या घटती है? और ही बढ़ती जाती है, क्योंकि वो सब भिखारी है। ये बाप तो सभी अनेक धर्मों का खलास कर देते हैं। हर बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज को खत्म करके नया बना देते हैं, वहां नई दुनिया में भिक्षु टिंडन आदि कुछ भी नहीं होते। बाप नई दुनिया स्थापन करके पुरानी दुनिया का विनाश कर देते हैं। ऐसे नहीं कि पहले पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी फिर नई दुनिया की स्थापना होगी, नहीं, पहले स्थापना फिर विनाश। तो जो नई दुनिया की स्थापना होगी उसमें थोड़े लोग होंगे या बहुत लोग होंगे?
थोड़े लोग।
जो थोड़े अच्छे अच्छे होंगे उनका संगठन बनेगा, उनकी स्थापना होगी। उन अच्छे से अच्छे संगठन की यादगार है आठ की माला। आठ ऐसी आत्माएं हैं जो भगवान के सर पर रखी हुई दिखाई जाती है। ये ड्रामा में नूंद है स्थापना और विनाश की। समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस षष्ठी चक्र के आदि मध्यंत को तुम नहीं जानते हो। इस सारी षष्ठी के चक्र में आदि कितनों से होता है और इस मनुष्य षष्ठी रूपी चक्र में अंत में कितने होते हैं? कितने होते हैं? आदि होती है आठ से और विनाश होता है कितनों का? जो भी है सब मनुष्य मात्र खलास हो जाएंगे। बाप बतलाते हैं सतयुग आदि में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहां न इतने मनुष्य होते हैं और न इतनी प्लानिंग आदि की बातें करते हैं। तो पहले तो षष्ठी के आदि मध्य अंत को आकर के समझो। और समझाने के लिए ज्ञान देने वाला सदगति दाता बाप एक ही है। सदगति अर्थात सतयुगी मनुष्य पहले पहले थे ही यह देवी देवताएं। और पहले पहले जो नई दुनिया थी उसमें थे बहुत थोड़े, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों की फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। काम तो महाशत्रु है, आजकल तो इसे काम विकार के पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई की किसी के साथ दिल लग जाती है और शादी नहीं कराई तो बस क्या कर देते हैं? कामेशु क्रोधेशु, घर में ही हंगामा मचाए देते हैं। कहाँ की बात है?
आज की बात है,
अभी की बात नहीं है। अभी घर घर में ऐसा नहीं हो रहा है। बाहर की दुनिया की बात है या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया की भी बात है? बेसिक ब्राह्मणों की ही दुनिया की बात है, एडवांस की बात नहीं है। एडवांस में भी ऐसा हो रहा है, कोई की किसी के ऊपर दिल आ जाती है और आस पूरी नहीं दिखाई देती तो क्या करते हैं? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, खलास हो जाते हैं। इस काम विकार के पिछाड़ी प्राण देने को तैयार हो जाते हैं। कितना हंगामा हो जाता है। तो देखो ये कितनी गंदी दुनिया है। एक दो पर काम कटारी चलाए कितना हंगामा करते रहते हैं, सभी डरती हैं। शादियां कराते हैं कितना खुश होते हैं। शादियां माने क्या? विकार में जाना माना शादी, तो ये भी चित्र बनाओ। उन दोनों के हाथ में काम कटारी हो, क्या कौन से हाथ में कटारी? बुद्धि रूपी हाथ में काम विकार की कटारी आती है। ये रिजल्ट क्या हुआ?
चित्र बनाया।
समझाया?
समझाते
तो बीके वालों ने बनाया या बीके वालों में जो सरपरस्त मुखिया है उन्होंने बनाया पहले? पता ही नहीं। सीढ़ी का चित्र किसने बनाया?
है रावण का चित्र उसके नीचे दिखाया ना।
हाँ, सीढ़ी के चित्र में रावण के चित्र के नीचे दिखाया ना, काम कटारी लेकर खड़ा हुआ है। पूरी साड़ी को गंदा कर रखा है सफेद साड़ी, फिर भी उसको गंदा कर रखा है। आस पूरी नहीं होती है तो कितना घमासान कर देते हैं। तो तुम ये चित्र बनाओ, उन दोनों के हाथ में कटारी हो। सत्युग में तो काम कटारी की बात ही नहीं। वहां तो दोनों को फूल मिलता है, वहां तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारे तो देते रहते हैं, तुम उन चित्रों को रिफाइन करो। भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाते तो है ना, ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वो ठीक ही होता है। इसको भी समझाना बहुत सहज है। समझाने देते समय सभी का अटेंशन बाप की तरफ खींचना है। ये बाप का ही काम है, फैमिली प्लानिंग। और अभी बाप ऊपर बैठकर तो प्लानिंग नहीं करेंगे। कहते तो हैं जब जब धर्म की ग्लानी होती है, आसुरी राज्य हो जाता है, तभी आकर इन सभी को खलास कर दैवी राज्य की स्थापना करता हूं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? गीता में क्या श्लोक बोलते हैं? संभवामि युगे युगे, किस लिए? धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना के लिए। विनाशाय दुष्प्रताम, दैवी राज्य की स्थापना करता हूं ना। अभी आसुर लोग तो अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं, ये सभी विनाश हो जाएंगे। विकारियों का विनाश होता है, जो निर्विकारी बनते हैं वो ही फैमिली आकर के राज्य करती है। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, किसकी स्थापना है? ब्राह्मणों की तो स्थापना, लेकिन बात क्या चल रही है? मान लो दादा लेखराज ब्रह्मा था, तो उनके लिए उनके मुख से स्थापना और विनाश के बारे में क्या बोला है?
10 वर्ष
आने वाले 10 वर्ष के लिए बोला। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो पहले बीज पड़ेगा या पहले स्थूल संगठन बनेगा? पहले बीज पड़ता है। नई दुनिया की स्थापना का बीज बुद्ध रूपी धरणी में पड़ता है। बीज किसके द्वारा डाला जाता है? बाप के द्वारा बीज डाला जाता है। गीता में क्या लिखा है? हम बीज प्रदपिता, मैं नई दुनिया की स्थापना करने के लिए बीज बोता हूं। तो नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो पुरानी दुनिया का ऑटोमेटिक बीज पड़ जाता है। मान लो कोई पुरानी जिंदगी जी रहा है, पुराना जीवन चल रहा है, पुराना जन्म जी रहा है, अब उसका नया जन्म होने वाला है, तो पुराने जन्म की बातें भूलनी पड़ेंगी कि नहीं भूलनी पड़ेंगी? भूलनी पड़ेंगी, वो तो हद की बात है। यहां फिर है बेहद की बात, जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब सब भूल जाना है। ऐसी अवस्था जब बने तब कहेंगे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। आप मुए मर गई है सारी देहभानी अनुहारी दुनिया। क्यों? क्योंकि संकल्पों से ही नई सृष्टि रची जाती है। तो इतनी दृढ़ संकल्प की शक्ति चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग की स्थापना हो रही है। किसके द्वारा? पहले भी ब्रह्मा के द्वारा हुई थी। कब? आदि में भी हुई थी और विनाश भी हुआ था, अभी भी हो रही है और रिजल्ट भी आएगा। काय की स्थापना हो रही है? फैमिली प्लानिंग की स्थापना। ब्रह्मा कुमारियां पवित्र बनती है तो उन जरूर उन पवित्र बनने वाली ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए नई दुनिया चाहिए। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, बहुत ही छोटा युग है। कितने वर्ष में नई दुनिया की स्थापना कर देते हैं? एक्यूरेट कितने वर्षों में नई दुनिया की स्थापना हो जाती है? 50-60 वर्ष में बहुत अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। प्लानिंग करने वाला कौन है? बाप। इतनी अच्छी प्लानिंग कर देते हैं जो सभी का हिसाब किताब चुकतू कराकर अपने घर ले जाते हैं। कब? सबका हिसाब किताब भी चुकतू हो जाता है जन्म जन्मांतर का, और फैमिली प्लानिंग भी हो जाती है, और नई दुनिया के नए संगठन की स्थापना भी हो जाती है। इतना सारा कचरा तो वहां ले नहीं जा रही है। और छी छी आत्मा जा ही नहीं सकती, इसलिए बाप आकर के गुलगुल बनाते हैं ले जाने के लिए। तो ऐसी ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करो। तुम रिहर्सल करते रहते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल कराए रहा हूं। क्या अभी ये रिहर्सल चल रही है। रिहर्सल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, शूटिंग कहो, ये शूटिंग हो रही है। तो बताओ ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं कलब पहले मिसल में अपना कार्य कर रहा हूं, तुम पुकारते ही हो बाबा पतित फैमिली से बदल करके पावन फैमिली की स्थापना करो। तो पावन फैमिली में शुरुआत इकाई से होगी या ढेर सारी फैमिलीज होंगी? एक इकाई से स्थापना शुरू करते हैं, एक ही परिवार होगा। इस समय तो सभी पतित हैं, शादियों पर कितना लाखों खर्चा करते हैं, कितना साध माना मनाते हैं, परंतु रिजल्ट क्या होता है साध माने का? पावन बनने के बदले और ही पतित बनते हैं। पहले कुमारी पावन होती है परंतु कुमारियां भी कोई बहुत गंदी होती है। कितना भी समझाओ, समझाने से मानती ही नहीं, बस मूत पीने की तांत लगी रहती है। 30 मार्च 1968 की वाणी का तीसरा पेज, बस यही दिल में समझ, यही दिल में चलता रहेगा। काम कटारी चलावे, मूत पीवे, ऐसे भी बच्चों को देखते हैं। कौन कौन देखते हैं? बाप ऐसे भी बच्चों को आंखों से देखते हैं तो समझते हैं हम भी काम कटारी चलावे। बाप तो देखते हैं, बाप का देखने का काम तो हमारा, हमारा काम कटारी चलाने का काम। हनीमून करने के लिए जाते हैं ना? अरे हनीमून क्या, काम कटारी चलाने जाते हैं। परंतु उसका नाम क्या रखा है, है? हनीमून। मून क्यों नाम रखा है, है? हनी सन नाम क्यों नहीं रखा है? अरे सूर्य तो सारे कचरे को जलाए देता है, चंद्रमा कचरे को जलाता है या कीड़े मकोड़ों की दुनिया को बरकरार रखता है? नाम रखा है हनीमून। हनी माने क्या है? शहद, मीठा होता है ना, सुनते हैं तो दिल होती है हम भी ऐसा हनीमून मना रहे। कृष्ण भी पुनर्जन्म लेते हैं, ये कृष्ण भी हनीमून करते करते काला बना है। इसलिए उनको श्याम सुंदर कहा जाता है। ज्ञान शिक्षा पर बैठ फिर सुंदर बने। फिर काम शिक्षा पर बैठ करके काला मुंह किया। आजकल तो राम को भी काला, कृष्ण को भी काला और शिवलिंग को भी काला बनाए देते हैं। क्यों है? शिव बाबा भी काला बनता है क्या? जिन राम कृष्ण में शिव सुप्रीम सोल ने प्रवेश करके उनको काले से गोरा बनाया था, वो ही आत्माएं फिर संग के रंग में आने से द्वापर कलयुग में काली बन जाती है। लिंग को काला दिखाते हैं, वो भी मुकर्ररथ की यादगार है। तो लिंग काला है, लिंग माना शरीर, और उस काले लिंग रूपी शरीर में बिंदु रूपी शिव की आत्मा प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तो उन भक्तों से पूछो तो सही, ये कृष्ण को काला, राम को काला, शिवलिंग को काला तुमने क्यों बनाया हुआ है? कहेंगे हम क्या जाने। बोलो, अरे राम कृष्ण तो देवताओं के युग में गोरे थे ना, फिर रावण राज्य में काले बने। बाप कितना क्लियर करके समझाते हैं, अनेक मत रूपी सिरों वाला रावण काला बनाते हैं और एक मत देने वाला राम गोरा बनाते हैं। जो राम की मत पर चलते हैं उनकी सेना अलग, और रावण की मत पर चलने वालों की सेना अलग। रावण रामलीला दिखाते हैं तो रावण की मत पर चलने वालों का ड्रेस कैसा दिखाते हैं? काला ड्रेस दिखावेंगे। और राम की सेना का ड्रेस कैसा दिखाते हैं? अरे बंदरों का ड्रेस कैसा होता है, चोला कैसा होता है? लाल चोला दिखाते हैं। कितना क्लियर करके समझाते हैं। कोई कोई कुमारियां ऐसी होती हैं जो काला मुंह करने वगैरह रह नहीं सकती हैं, कहां नहीं रह सकती हैं, है? अरे कहां नहीं रह सकती हैं? बाबा कहां की बात बताते हैं? बाबा दिन प्रतिदिन बड़े ही कड़े अक्षर देते रहते हैं। इसको बाहर की दुनिया वालों को, बाहर की दुनिया वाले बाबा के अक्षरों को सुनने के लिए बैठे हैं क्या? लौकिक बाप भी समझाते हैं शादी न करो तुम्हारा काला मुंह हो जाएगा। तो बाप को भी जवाब दे देती है, कहती है हम तो काला मुंह करके जल के खत्म हो जाएंगी। बाप ने आगे भी बहुत कड़ी वाणी चलाई थी, अभी भी समझाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को ये धंधा नहीं करना चाहिए, ज्ञान की समझानी देने का धंधा चाहिए। सारी दुनिया आसुरी नींद में सोई पड़ी है, उनको जगाना है। गोरा बन करके औरों को बनावे तो उनके ऊपर बाप का प्यार भी जावे। क्या कहा? खुद गोरे बने और दूसरों को भी वैसे ही समझानी देवे तो बाप का प्यार जिनकी कथनी करनी एक है उनके ऊपर क्यों नहीं जावेगा। ऐसी सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। मुख से कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो सर्विस होगी या डिस सर्विस होगी। कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, ये तो कोई भी समझा सकेंगे, समझ सकते हैं। ये राजा रानी बनने वाले हैं, ये दास दासियां बनने वाले। राजा रानी बनने वालों के लिए कहेंगे जरूर आगे जन्म में इन्होंने ऐसे अच्छे कर्म किए, बुरा कर्म करने से बुरा जन्म मिलेगा। तो जन्म जन्मांतर ये कर्म की गुह्य गति चलती रहती है। अभी बाप तुमको अच्छा कर्म सिखलाई रहे हैं, बाप ये जरूर समझेंगे अगले जन्मों के कर्मों के अनुसार ऐसे बने। कहां कहां समझेंगे
भक्ति मार्ग।
हाँ, भक्ति मार्ग की दुनिया में जरूर सब समझते हैं, भक्त इस बात को जानते हैं। बाकी क्या कर्म किए हैं वो बेचारे नहीं जानते, कर्म गाए जाते हैं ना। जितना जो अच्छा कर्म करता है उतना ऊंच पद पाता है, ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनेंगे। और ऊंच कर्म करना ऊंच से ऊंच बाप का ही काम सिखाना है। अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो फिर झाड़ू लगाते हैं, क्या कहा है? अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो फिर झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू क्या करता है? कीड़े मकोड़ों को साफ कर देता है, भगा देता है, फिर बढ़िया ढोते रहते हैं। उनको कर्मों का फल तो कहेंगे ना, ये कर्मों की थ्योरी चलती ही रहती है। श्रीमत से अच्छे कर्म होते हैं, मनमत और मनुष्यमत से बुरे कर्म होते हैं। कहां बादशाह और कहां दास दासियां। राजा बनाने वाला है बाप, और नौकरी करना कौन सिखाते हैं? अंग्रेज लोग भारत में आए, उन्होंने क्या सिखाया और क्या किया?
नौकरी की।
भारतवासियों को नौकर बनना सिखाई दिया। अभी आजकल सभी किसमें बड़ाई समझते हैं? अच्छी सर्विस मिल जाए, नौकरी मिल जाए। अंग्रेजों ने राजाओं को खलास कर दिया और सबको नौकर नौकरानी बनाई दिया। बाप कहते हैं अभी फॉलो करो, मेरी श्रीमत पर चलो तो ऊंच पद पावेंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं। ये मम्मा बाबा इतना ऊंच बनते हैं, इनके कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती नहीं है, पिछाड़ी में उनको साक्षात्कार भी होगा कि हमने ऐसे दुख देने के कर्म किए। नहीं तो बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो ना बाप बनेंगे, रुलेंगे पिलेंगे तो खराब हो जाएंगे। ये तो उस पढ़ाई में भी होता है, इसमें भी होता है। कोई तो कुछ समझते ही नहीं है, कितना भी समझाओ। दिल में होता है जो नहीं समझते उनके दिल में क्या होता है, क्या चलता है। हम आ भी जाकर के शादी कर लेंगे, काला मुंह करने की बड़ी खुशी हो जाती है। तुम भाषण में भी ऐसे समझा सकते हो, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। बोलो, यहाँ कितनी कन्याएं होंगी जिनकी दिल होती है हम शादी करके काम चिता शिक्षा पर चढ़े। भगवान हुआ, काम चिता पर बैठने से काला मुंह करते हो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, इस समय सारी दुनिया का काला मुंह है। काम चिच्छा पर जल मरे हैं, कहते हैं स्त्री को कुमारी को देखने से हमारी अवस्था गिरती है। अब वहां नई दुनिया में तो ऐसे अवस्था नहीं गिरेगी। बाप कहते हैं नाम रूप देखते ही क्यों हो, तुम्हें क्या देखने के लिए बोला है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो और सब विनाशी है। तुम तीसरी आंख से देखो तो आत्मा दिखाई पड़ेगी। भाई भाई को देखो, ये बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना कब किसी की बुद्धि में नहीं होगा, जरा सोचो तो। ये लक्ष्मीनारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, बाप का विचार सागर मंथन होता रहता था। ऐसे ऐसे समझावे मिस्टर आदि को, तुम भी समझाओ। ये सर्वगुण संपन्न थे ना, आजकल तुम नया ब्लड समझते हो, परंतु देखो ये नया ब्लड क्या करते रहते हैं। क्या गांधी जी ये सिखला करके गए हैं, बताओ कि राम राज्य बनाने की ये युक्ति है। राम राज्य स्थापन करना ये तो बाप का ही काम है, असुर भिखारी थोड़े ही राम राज्य स्थापन करते हैं। देवताएं तो एवर प्योर थे। 21 जन्म पावन, फिर 83 जन्म, 63 जन्म पतित बने। समझाने में इतना मस्त रहना चाहिए, रीढ़ बकरियां क्या समझा सकती है। बाप कहते हैं सर्विस पर चढ़ो तो और ही सो जाते हैं, सुनते ही नहीं। तकदीर में नहीं है तो बाप क्या कर सकते हैं। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, तो हिम्मत करो, मेरी दाढ़ी की लाज रखो। दाढ़ी अक्षर फिर उन्होंने ब्रह्मा को दे दिया है। दाढ़ी की किसकी लाज रखे है? ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज? विष्णु को तो दाढ़ी होती नहीं, होती है क्या? ब्रह्म विष्णु को तो होती नहीं, फिर किसको होती है? शंकर को दाढ़ी भी दिखाते हैं और फिर क्लीन शेप भी दिखाते हैं। तो बाप कहते हैं मेरी दाढ़ी की लाज रखो, दाढ़ी अक्षर को फिर उन्होंने ब्रह्मा को दिखाई दिया। तो बाप कहते हैं माया पर जीत पहनो, ये ब्रह्मा का गायन नहीं है क्या? माया जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत, ये किसका गायन है? परंतु माया ऐसी है जो एकदम नाक से पकड़ करके गटर में गिराई देती है। गटर में गिर करके माथा न मुड़ाई लो। शुरू में बाबा बहुत कड़ी वाणी चलाते थे, कहते थे डॉग इन द मैंजर, ऐसे ऐसे अक्षर कहते थे। न खुद अमृत पीते हो न औरों को पीने देते हो, वातावरण ही खराब करते रहते। बड़े बड़े आदमी आते थे तो बाबा की बड़ी जोर से वाणी चलती थी। उन बड़े आदमियों ने भिख न मिलने से बड़ा हंगामा कर दिया। कोर्ट में जाकर के बाबा को कहने लगे, इनको कहो, इनको इनको, हाँ बाबा के कोर्ट में जाकर बाबा से कहने लगे, इन कन्याओं माताओं को कहो भिख देवे। अरे तुम बोलो, हम तो महावाक्य भगवान के सुनने जाते हैं, काम महाशत्रु है, पावन बनना है, वो तो गीता के वचन है। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, तो बाप कहते हैं मैं इनको क्या जवाब दूं। कोर्ट में बोलते हैं मैं इनको क्या जवाब दूं, कौन जवाब देवे। बोले नहीं, तुम बोलो, तुम कहो। अच्छा कह देता हूं। दिल में समझता था कि मेरे ऊपर से कहने से ये बच्चियां मानेंगी, मानेंगी तो नहीं, बच्चियां समझू ऐसे थोड़े ही, तो वह मान लेंगी। तो थोड़े समय के लिए राजी करने के लिए युक्ति रचनी पड़े। कितना हंगामा हुआ, कितना झगड़ा हुआ, सभी को कहा चिट्ठी लिखा करके आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। चिट्ठी लिखा करके आवेंगी तो फिर आकर के झगड़ा नहीं करेंगी। इतना हंगामा हुआ, अखबार में पड़ गया, एक कृष्णा आया है, उनको 16,108 रानियां चाहिए। अब अखबार तो बहुतों के पास जाता है, जो जो पढ़ते हैं उन्हें एक एक से बैठ करके माथा कौन मारे। ये अखबार ही गिलानी करने वाले हैं और ये अखबार ही फिर काम में आवेंगे। आगे चल करके अखबारों में भी आवेगा, अखबारों में तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। कहेंगे बरोबर, ये तो भगवान ने कहा है, काम महाशत्रु है, पावन बनो और विश्व में शांति की स्थापना करना है, ये तो बाप का ही काम है। नहीं तो कोई कितनी भी ढेर सारी विश्व कॉन्फ्रेंस करता रहे, कितनी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करते हैं, परंतु शांति तो स्थापन होती नहीं। ऐसी ऐसी बातें निकालो, एक बाप ही फैमिली प्लानिंग बना देंगे। ब्रह्मा द्वारा फैमिली प्लानिंग की स्थापना, बाकी जो भी बचेंगे उनका शंकर द्वारा विनाश। फिर एक फैमिली की पालना होगी, वहां और कोई धर्म नहीं होगा। एक फैमिली की पालना होगी या अनेकों फैमिली की पालना होगी, एक ही फैमिली की से शुरुआत होगी, वहां और कोई धर्म होता ही नहीं। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे तुम भी समझाओ। परंतु ऐसे सर्वशील बच्चे बहुत कम हैं। ऐसी ग्रहाचारी बैठ जाती है जो उड़ ही नहीं सकते हैं, जैसे कि ज्ञान योग के पंख ही कट जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, बल नोट्स भी लेते हैं परंतु धारणा नहीं होती है। बाप को तो प्यारे सर्विस उन बच्चे ही लगेंगे, बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छे सर्विस करने वाले हैं और कौन भी सर्विस करने वाले हैं, ये तो अपने ही दिल से पूछना चाहिए कि हम जो भी काम करते हैं बाप की याद में करते हैं, याद में भोजन बनाते हैं, खाते हैं, बीच में भूल तो नहीं जाते हैं। समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। मिनिस्टर आदि को बुलाते हो, भाषण आदि करते हो तो युक्ति से ऐसा समझाओ। बिरला बच्चा है जो विचार सागर मंथन करके ऐसे ऐसी सर्विस करने में मदद करते हैं, खुदाई खिदमतगार होते हैं ना, वो तो समझते हैं खुदा ऊपर से प्रेरणा देते हैं। बाप कहते हैं दूर भी नहीं देता हूं, मैं तो आता ही हूं पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने। ये तो बहुत क्लियर बात है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना पावन दुनिया की, बाकी सभी पतितों का विनाश हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी प्लानिंग है, विचार करो कि नई दुनिया में कौन कौन थे और पुरानी दुनिया को बदलना ये तो बाप का ही काम है। पुरानी दुनिया बदल करके नई दुनिया बनाना क्या है ना, मिनिस्टरों आदि का काम है। ऐसे ऐसे फलक से बोलना चाहिए। तो देखो क्या तुम समझते हो ऐसी ऐसी वाणी सभी चला सकेंगे। नोट्स लेते हैं तो फिर विचार सागर मंथन कर वाणी चलाने के लिए तैयार होना चाहिए। सिर्फ नोट्स लेने से क्या फायदा होगा, ये सभी गस्सा मारते रहते हैं। चार्ट लिखना और चलन उल्टी चलना तो उनसे क्या फायदा, चलन में फर्क कहां दिखाई देता है, इनके बोल मीठे कहां हैं। कोई तो लोभी भी बहुत है, बस सारा दिन ये खाऊं ये खाऊं, अरे खाऊं खाऊं पड़ते करते खाऊं खाऊं करते करते पेट में बरचाएंगे बलाऊं, क्या पड़ जाएंगे बलाऊं, क्या होता है छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, तो मुख्य बात है बाप समझाते हैं अपन को, आत्मा समझो, बाप को याद करो, तुम्हारी खाद निकल जाएगी, तुम्हारा बड़ा ही फर्स्ट क्लास पद बन जाएगा। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, भूल जाते हो। कोई कहते हैं बहन जी हमको निष्ठा कराओ, हमको सामने बिठाओ, बाबा समझते हैं कि ऐसा कहने वालों में कुछ भी ज्ञान नहीं है, इन्होंने ज्ञान का तंत्र समझा ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है याद किसको कहा जाता है। साक्षात्कार हुआ बस उसमें ही खुश हो जाते हैं। बाबा समझते हैं माया की ग्रहाचारी है, ध्यान में जो आते हैं उनकी अवस्था कच्ची है। क्या कहा, ध्यान और साक्षात्कार, ध्यान दीदार किसको होता है, जो कच्चे होते हैं उनको ध्यान दीदार हो जाता है। घड़ी घड़ी कहेंगे मम्मा आई बाबा आया, या कहेंगे विश्व किशोर आया। बाप कहते हैं कब कुत्ता बिल्ला भी आ जाएगा, पता कैसे चलेगा कि कब मम्मा आई कब बाबा आया कब कुत्ता बिल्ला आया। सभी प्रवेश करते हैं, शास्त्रों में कहानी भी दी है ना, पांडवों के साथ कौन गया? कुत्ता भी गया। कैसी कहानी बनाई है व्यास ने बैठ। फिर भी ये भक्ति मार्ग के शास्त्र बनेंगे। अरे भगवान ने तो आकर के नॉलेज दी है, बेहद का बाप हसीकुड़ी में समझाते रहते हैं। अच्छा रूहानी बच्चों को याद दिया, गुड मॉर्निंग नमस्ते।